जिनकी अकाले मौत होती है वो भूत प्रेत बनते हैं। समझा? जो भूत प्रेत बनते हैं वो ज्यादा पाप करने वाले हैं या कम पाप करने वाले हैं? और जो ज्यादा पाप करते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं या देहधारी धर्म पिताओं के बच्चे हैं? वो देहधारी धर्म पिताओं के चलाए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो श्रीमत पर चलने वाले नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं। भूत प्रेत क्या करते हैं? दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं खास करके सात धर्मों से कनेक्टेड हैं। सात धर्मों के सात धर्म पिताएं हैं। क्या? इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख और आर्य समाज। ये सात धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं उनमें अच्छे से अच्छे भी हैं, क्योंकि उनकी भी मालाएं होती हैं। माला तो सब धर्म में घुमाते हैं कि नहीं? तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो माला में जाती हैं, और जो माला में नहीं आती हैं वो नीची आत्माएं हैं, नीचा पुरुषार्थ करने वाली है, ज्यादा पाप कर्म करने वाली है, या पुण्य आत्माएं हैं? पाप करने वाली आत्माएं। वो सब भूत प्रेत बनते हैं। उनमें से जो स्त्री चोले वाले होते हैं वो भूत नहीं बनते। और
वंदे मातरम का भेद में आते
हैं।
हाँ, वंदे मातरम।
हाँ,
उसका भेद में
वंदे मातरम का अर्थ है माता किसे कहा जाता है? हाँ? अरे माता जो टाइटल पड़ा है वो किसका पड़ता है? हैं? अरे अरे कोई कन्या बैठी है उसको माता कहेंगे? वो तो कन्या है। माता कब कहा जाता है? जब पति बनाया हो। पति माने पाते, रक्षक बनाया हो, उसको माता कहा जाता है। और रक्षक एक होगा या अनेक होंगे? माता जो एक रक्षक बनाए जीवन में वो अच्छी माता पूजनीय है, या अनेक रक्षक बना ले तो पूजनीय? एक रक्षक बना दे। तो ये संगम युग की बात है खास। मैं माताओं को कन्या बना देता हूं, कन्याओं को माता बना देता हूं। तो सारी माताएं भी हैं और वो एक शिव की बन जाती हैं, तो वंदे दुनिया करती है। क्या? सारी दुनिया किन माताओं को वंदे मातरम करती है? जो एक बाप की बन जाती है। वंदे मातरम, वंदे जगदम्बा नहीं कहते हैं। क्या? वंदे मातरम। जगदम्बा में और भारत माता में क्या फर्क है? हैं? हाँ, वो सारा जगत उस माता के ऊपर हावी होता है, और भारत माता के ऊपर कोई हावी होकर के नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक शिव की शक्ति बनकर के रहती है। तब उस माता को वंदे मातरम कहा जाता है। ये पवित्रता की खासियत है। जन्म जन्मांतर की पवित्रता जिसके अंदर है उसके लिए कहा गया है वंदे मातरम। फिर उसकी भुजाएं भी है। नंबर वार, जो भुजाएं हैं सहयोगिनी है, प्योरिटी में सहयोग देने वाली है, वो भी वंदे मातरम। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नर। एक है या शिव शक्तियां अनेक हैं? अनेक हैं। इसलिए बोला तुम सब पार्वतियां हो है? क्या हो? पार लगाने वाली हो, पार्वती हो। धन वाली होती है तो कहते हैं धनवती, कहते हैं ना, ऐसे ही पार्वती। पार्वती माने पार लगाने वाली। अंदर से नियत खराब हो, विकार भोगने की नियत हो तो पार लगाएगी या डुबोएगी? तो डुबो ही देगी। वो पार्वती कैसे हो सकती?
जो उत्तराखंड में जो जल प्रवाह हो गया उसमें बहुत सारे लोग मर गए, वो सब अकाले मौत हो गए।
हाँ, वो केदारनाथ जो है वो चार धामों में से एक धाम है या नहीं है? जो चार धाम है वो कौन कौन से धर्मों से कनेक्टेड है? चार मुख्य धर्म है। उन चार मुख्य धर्मों में से जो पहला धाम है उस पर पहले कदर कहर टूट गया है, वो विधर्मियों का धाम हुआ या स्वधर्मियों का हुआ? कैसे? उस तरफ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की जो देह अभिमानी की मिट्टी है वो चिपकने वाली है, या गंगा की मिट्टी की तरह थोड़ा सा पानी डालो तो धुलने वाली है, चिपकने वाली मिट्टी है? कौन सा धर्म है जो देह की चिपक चिपक में ज्यादा मरता है? इस्लाम धर्म। तो वो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो मंदिर उसकी यादगार है। जो मंदिर में मुखिया है, पूजा करने वाले पुजारी है, और वो मंदिर है वो बच गया क्या? और बाकी सब विनाश हो गए। इसका कारण क्या? इसका कारण है जो भगवान के बंदे होते हैं वो विनाश में सुरक्षित रहेंगे। वो भक्ति मार्ग का मंदिर था। अभी दुनिया में भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? तो भक्ति मार्ग की शूटिंग दिखाई गई। इस्लाम धर्म पहले मरेगा। मुरली में क्या बोला? कौन पहले मरेंगे? ये इस्लाम ही पहले मरेंगे। और है
उनके कंड तक जल गया लेकिन वो मूर्ति नहीं गिरी।
हाँ, और
ब्रह्मा की बेटी निर्मल शांता ने शरीर छोड़ दिया बाबा।
ब्रह्मा
बेटी निर्मल शांता?
हाँ,
शरीर छोड़ दिया।
ये तो सबको मालूम है। ये क्या बात आप फिर सुना रहे हैं? आप कोई नया अखबार निकाला है क्या? है हाँ। आप पूछना क्या चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं क्या? है ये तो आपने हद की बात पूछी। अच्छा, कुछ पूछना नहीं चाहते, छोड़ो। हाँ,
वो युद्ध के बारे में
है?
यज्ञ के बारे में असलियत सुनाती थी ना
है?
निर्मल शांता जी
हाँ?
यज्ञ के आदि के बारे में वो
सच्चाई
बता देती थी, उसको मुंह बंद कर दिया था।
यज्ञ के बारे में सच्ची स्त्री मनोहर दादी सुनाती थी, लेकिन मनोहर दादी को कभी किसी स्टेट का जोन का जोनल हेड नहीं बनाया गया, किसी सेंटर का इंचार्ज भी नहीं बनाया गया। क्योंकि वो हैं यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाती थी। बड़े दीदी दादियां विरोध करती रहे, लेकिन सच्ची बात सुनाने से कभी झिझकती नहीं थी। निर्मल शांता दीदी दादी भी भोली थी, और भोलेपन में वो जो कुछ बोलती थी वो सच्चाई ही बोलती थी। इसलिए माउंट आबू के जो हेड्स थे, उन्होंने उनको इंजेक्शन लगा लगा के उनकी स्मृति शक्ति छीन करा दी। उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पाता था, याद ही नहीं था।
बाबा, मनोहर दादी ने भी ये इसके सेवक नाम के बारे में या पैसा पिता के बारे में बताया नहीं थे?
हाँ,
नहीं बताया
उन्होंने बताया
ना?
उन्होंने बताया नहीं, या उनका जो बताया हुआ लेख है, लिखा हुआ लेख है, वो कभी छपाया नहीं गया? क्या हुआ होगा हैं?
लेकिन जब बता दी थी तो नहीं बता दी थी ना, छपाने की क्या बात है?
है?
जब प्रत्यक्ष सुना दी थी
हाँ?
उस समय सुनाया नहीं कुछ भी?
सुनाया नहीं आपने? क्या सुना? सब जगह बैठ के
बहुत बार सुना
आपने, सब जगह बैठ करके सुना। जहां जहां मनोहर दादी जाकर के सुनाती थी वहां बैजनाथ भाई सुनते थे। कमाल है,
बहुत बार सुना मैं।
हाँ, बहुत बार सुना, लेकिन उस समय जब आपने सुना वो कौन सा सन था?
80 के बाद।
80
के बाद।
और उन्होंने कब शरीर छोड़ा? और
बाबा, शिवलिंग के ऊपर इस सावन महीने में दत्तोरी का फूल चढ़ाते हैं, तो दत्तोरी का फूल इतना बदबूदार होते हुए भी वो क्यों चढ़ाते हैं उसके ऊपर?
ये अक का फूल बाबा ने बोला, धतूरे का फूल बोला, और सावन के महीने में शिवलिंग को गुलाब के फूलों से भी सजाया जाता है सोमवार को, वो भी बोला। रूह है गुलाब, तो ये रूह है गुलाब क्या है, अक का फूल क्या है, और ये धतूरे का फूल क्या है? अगर ये नहीं मालूम है तो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। रूह है गुलाब माने रूहानियत की स्टेज में रह करके दिव्य गुणों की प्योरिटी की खुशबू छोड़ने वाला, वो हुआ रूह है गुलाब। और जो अक का फूल होता है वो बहुत छोटा होता है और दुर्गंध वाला होता है कि सुगंध वाला होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में दुर्गंध किस बात की होती है, है? विचार की दुर्गंध होती है क्या? जो बच्चियां आज के दूषित समाज में, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां समाज के जो सभ्यजन कहे जाते हैं उनके द्वारा भी, अड़ोस पड़ोसियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा दूषित कर दी जाती है बचपन में, विचारणी बन जाती है और फिर आकर के यज्ञ में समर्पित हो जाती है। कोई कली हो और कली को बचपन में ही कोई पक्षी खोट मार दे तो वो प्रफुल्लित फूल बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। बिचारी का टिर्री शरीर रह जाता है, शरीर की जो है वो बाढ़ नहीं हो पाती है। जिसे आज के डॉक्टर लोग कहते हैं ग्रोथ, क्या कन्याओं के ऊपर जब कुछ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, छोटी कन्याएं या बड़ी कन्याएं, तो उनका ग्रोथ एग्जामिनेशन होता है कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ी, उसका कारण निकाल लेते हैं। वो कारण निकलता है कि उनके साथ बचपन में ही दुष्कर्म कर दिया गया। तो ऐसी कन्याएं जब यज्ञ में समर्पित होती हैं तो बाबा की बच्ची तो बन गई, बाबा की बच्ची बनी है तो फूल बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी तो, लेकिन यज्ञ में समर्पित होने के बावजूद भी उन्हें याद क्या आता रहता है? कन्या की एक टेंडेंसी होती है कि उनके जीवन में जो व्यक्ति पहली छाप डालता है वो व्यक्ति सारा जिंदगी याद आता है। बाबा की याद में कट लगने लगती है। तो वो हुए अक के फूल। और जो माताएं, माताएं तो पहले ही बन चुकी हैं, बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, कोई बात नहीं, माताएं कही जाती हैं तब, शादी हो बच्चे पैदा करें, बच्चे मां मां कहें तो मां हो गई। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर अपवित्र बनती हैं तो अभिविचारिणी हुई या विविचारिणी हुई? अभिविचारिणी, विविचारिणी हो गई। और वो विविचार, विविचारिणी होने के कारण वो धतूरे का फूल जैसे लंबे छेद वाला होता है, ऐसी उनकी दशा हो जाती है। उसमें से सुगंध निकलती है या दुर्गंध निकलती है? विविचार की दुर्गंध निकलती है। इसलिए उनको कौन सा फूल कहा जाता है? दत्त पूरा। बाबा के उर्मे तो लगी, बाबा के गले का हार तो बन जाती है, लेकिन कैसी दत्त तेरे। तो नाम जो है वो काम को प्रत्यक्ष कर देता है। धतूरे का फूल वो भी गले का हार बन जाते हैं। क्यों है? क्यों बन जाते हैं? अरे बाबा ने कहा क्या वैश्याय माला का दाना नहीं बनेगी? आज की दुनिया में, कलयुग के अंत समय, अंत जीवन की दुनिया में कन्याएं माताएं अगर पतित होती हैं तो उस पतित पने का कारण कौन बनता है? पुरुष बनते हैं या कन्याएं माताएं बनती हैं? पुरुष ही बनते हैं। इसलिए बाप उन माताओं को भी क्षमादान करते हैं जैसे कन्याओं को क्षमादान करते हैं। वो माताएं भी गले का हार बनती है, शिव बाबा के ऊपर अर्पण की जाती है और पुरुषार्थ में आगे जाती है। और
बाबा, सोमवार के दिन शिवमुठ भी चढ़ाते हैं। शिवमुठ बोलते उसे तांदूल चावल
चावल चढ़ाते हैं।
हाँ?
कभी कभी चावल चढ़ाते हैं, कभी मूंग चढ़ाते हैं, कभी तिल चढ़ाते हैं,
अलग अलग
ये बीज है।
जो बीज है खास करके चावल, वो चावल देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ आत्मा का स्वरूप है। जब टीका लगाते हैं मस्तक पर तो क्या लगाते हैं? चावल लगाते हैं। माने वो मस्तक में रहने वाली आत्मा जो टिकी हुई है मस्तक में, जिसको भी देखती है किस रूप में देखती है? चावल के रूप में देखती है, छिलका उतरा हुआ चावल के रूप में देखती है। किसी आत्मा को देवहानी है स्टेज में नहीं देखती। जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सात्विक रूप को देखता हूँ या तुम्हारे वर्तमान तामसी रूप को देखता हूँ, है तुम्हारे सात्विक रूप को देखता हूँ। सात्विक रूप तो छिलका उतरा ही हुआ होगा। हाँ,
सोमवार के दिन उसको
बेल
पत्री चढ़ाता
है,
उसका
अर्थ
क्या
है? सोम माने क्या? चंद्रमा। सोमवार सोमनाथ किसको ना था, किसको कंट्रोल में किया? सोम को कंट्रोल में किया, सोम को ना था। सोम माने ब्रह्मा, ब्रह्मा रूपी जो सोम रस देने वाला है उसको नाथ लिया, कंट्रोल कर लिया। तो सोमवार के दिन क्या होता है? क्या बताया? बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री चढ़ाते का मतलब क्या हुआ? दुनिया के जो तीन पत्रे हैं विशेष, तीन आत्माएं विशेष हैं, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली, ये तीनों ही आत्माएं एक डंडी से जुड़ जाती है। कौन डंडी? शिव। जैसे यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत के तीन सूत्र किस बात के सूचक हैं? है ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। तीनों ज्ञान सूत्र मिलकर के जब एक गांठ में बंध जाते हैं तो उस गांठ का नाम क्या देते हैं? ब्रह्म फांस। और ब्रह्म तो बहुत है, कौन से ब्रह्म में फंस गए? हाँ, उसी ब्रह्म में फंस गए जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। वो यज्ञोपवीत जब धारण कर लेता है ब्राह्मण तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, तीन सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में आया नहीं, तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। और
लेकिन बाबा वो लिंग के ऊपर जो ये बेल का पत्ता चढ़ाते हैं तीन पत्तों वाला, वो एक आदमी कई कई पत्ते चढ़ाते हैं।
हाँ, तो क्या हुआ?
तो ऐसा क्यों 108 का भी गायन है कि 108 चढ़ाना चाहिए?
हर धर्म में तीन आत्माएं विशेष होंगी या नहीं होंगी? दो बीज रूप आत्माएं, इब्राहिम ऊपर से आता, किसमें प्रवेश करता? आधार मूर्त में प्रवेश करता। आधार मूर्त का जन्म किससे होता? बीज रूप से होता। तो तीन मुख्य आत्माएं हो गई हर धर्म के ऊपर। तो अनेक हैं या एक हैं? है अनेक धर्म है, उन धर्मों के अनेक मठपंथ, अनेक छेड़े हैं। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान में निकालना और शिव बाबा का बनाना अच्छी बात है या खराब बात है? है? अच्छी बात है, है।
जो शरीर का दुख है बाप की याद करने से तब पाप नहीं करता है।
शरीर का जो दुख है बीमारियां बाप की याद से याद नहीं कर सकता है। बाप की याद से शरीर की जो बीमारियां हैं
हाँ
वो नहीं कर सकता
है। हाँ कर सकती है, जैसे दवाई खाई जाती है तो दवाई खाने के बाद लगातार खून में भिदती है कि नहीं भिदती है? हैं? लगातार खून में असर कर जाती है दवाई, जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन भी दो तरह का होता है, एक मांस में लगाते हैं वो धीरे धीरे असर करेगा क्योंकि देह अभिमान का मांस है, और एक नस में लगाया जाता है, कहते हैं ना इसने तो नस पकड़ ली। तो नस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो खून में तुरंत तुरंत हृदय जाता है। ऐसे ही है शिव बाबा की याद। शिव बाबा की याद में जब मंथन मनन चिंतन मंथन बंद हो जाता है, ये याद की दूसरी स्टेज है। उस दूसरी स्टेज को भी क्रॉस करके आत्मा पहली बीज रूप स्टेज में जब पहुंचती है तो जैसे नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है तुरंत असर करता है, ऐसे शिव बाबा की याद भी अंत में ही हॉस्पिटल रहेंगे हैं? नहीं रहेंगे। ये केमिस्टों की दुकान और दवाइयां रहेंगी? इन दवाइयों को बनाने वाले जो कारखाने हैं फार्मास्यूटिकल क्या कहते हैं हाँ? फार्मेसी है हाँ? वो कारखाने रहेंगे नहीं रहेंगे? ये डॉक्टर रहेंगे है नहीं रहेंगे? ये डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने वाले स्कूल रहेंगे ये भी नहीं रहेंगे? तब क्या करेंगे है हाँ? शिव बाबा रूहानी डॉक्टर तो है लेकिन है उसका इंजेक्शन की जरूरत है। वो इंजेक्शन जो लगाना जानते होंगे वो अपनी बीमारी का भी इलाज करेंगे और दूसरों की बीमारी का भी इलाज कर सकेंगे। सबसे बड़े से बड़ी दवाई है क्या? शिव बाबा की याद।
बाबा बड़े बड़े शहरों में जकात्मा का पहले बंद करवा दिया था
है?
बड़े बड़े शहर होते हैं ना महानगर
हाँ?
तो ऑक्ट्राइज चलता था पहले।
क्या चलता?
नाका नाका लिया जाता था ना ऑक्ट्राइज जकात नाका
हाँ।
वो कुछ समय के लिए बंद करवा दिया था
हाँ?
फिर से चालू करवा दिया तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है?
हाँ रास्ते है ना, उन रास्तों पर चुंगी चौकी बनाई जाती है क्या? और किसी शहर में जाने के रास्ते एक ही होते हैं या अनेक रास्ते होते हैं? हैं? अनेक रास्ते। तो कोई टाइम हुआ होगा कि वो जो अलग अलग रास्ते हैं उन रास्तों पर चुंगी लेना बंद कर दिया, अभी फिर चालू कर दिया। मतलब गवर्नमेंट को तो ज्यादा पैसा चाहिए या कम पैसा चाहिए? देखा कि बहुत घाटा हो गया है तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट फिर चालू कर दिया।
है
श्रावण मास में
शिव की पूजा क्यों करते हैं?
हाँ सबसे ज्यादा बरसात कौन से महीने में होती है और कौन सा युग है? संगम युग है श्रावण मास। क्या है? श्रवण शक्ति का मास है। तो यही कारण है कि श्रावण मास में जैसे स्थूल बरसात बहुत होती है ऐसे ही संगम युग में कौन सी बरसात होती है? ज्ञान की बरसात ज्यादा होती है। और जिस महीने में ज्ञान की बरसात ज्यादा होती है उस महीने में शिव की पूजा भी ज्यादा होती है। और कोई महीने में शिव की पूजा होनी चाहिए क्या? और कोई युग में शिव की पूजा होनी चाहिए? इतनी पूजा और कोई युग में नहीं होती जितनी पूजा श्रावण मास में होती है। ये संगम युग है, स्वर्णिम युग है। जब स्वर्णिम युग संसार में प्रत्यक्ष होता है तो बहुत पूजा होती है शिव बाबा की। अभी तो कम होती है। क्या दुनिया वाले तो जैसे मानते ही नहीं, मानते मानते ही नहीं। और जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण है, नीची नीची कुरियों वाले, वो बेसिक वाले मानते हैं, वो भी नहीं मानते। अच्छा एडवांस के जो सब ब्राह्मण है वो एक जैसा मानते हैं, वो भी नहीं मानते। वो भी नौ प्रकार के बीज हैं, नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं। जो अब्बल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, वो बहुत मान्यता देते हैं। ऐसी ही मान्यता जब सारी दुनिया में होने लगे, किसकी है? शिव बाबा की। तब कहेंगे श्रावण का महीना। सारी दुनिया में कौन सा धंधा चलेगा है? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ऐसा भी टाइम आएगा कि सारे धंधे दुनिया के चौपट हो जाएंगे, विनाश का ऐसा कहर संसार में प्रकृति के द्वारा, सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा ढाया जाएगा, सब धंधे चौपट हो जाएंगे। क्या जब सारे धंधे चौपट हो जाएंगे तो कौन सा धंधा चलेगा है? जो ईश्वरीय ज्ञान को लेने वाले हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाले हैं, ईश्वरीय ज्ञान की गहराई में जाने वाले हैं, उनका धंधा बहुत चलेगा। वो भूख नहीं मर सकते। और
बाबा शिव जयंती क्यों मनाई जाती है?
हाँ तुम्हारी जयंती क्यों मनाई जाती है? बोलो तुम्हारी जयंती मनाई जाती है कि नहीं? नहीं मनाई जाती। मम्मी पापा तुम्हारी जयंती नहीं मनाते है? अरे उन्हें मालूम तो है तुम्हारा जन्म कब हुआ, मालूम है? हाँ तो उन्हें याद नहीं आता।
बर्थडे मनाते हैं जन्मदिन।
बर्थडे मानी जयंती। जो बर्थडे है वो ही जयंती है। तो जयंती मनाई तब जाती है जब उस दिन की याद आती है कि जन्म कब हुआ। तो ऐसे ही जन्म जो है वो तब माना जाता है जब बच्चा गुप्त से प्रत्यक्ष होता है। गर्भ में गुप्त था, पता ही नहीं था बच्चा है कि बच्ची है, लूला है या लंगड़ा है या कैसा है। जब बाहर आया, प्रत्यक्ष हुआ तो सबने देखा, सबने जाना, शिव बोला भगवान। ऐसा भी दिन आएगा कि नहीं? अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, दुनिया के जितने भी मीडिया के साधन है सबके द्वारा दुनिया में सबको पता चलेगा कि शिव बाबा इस संसार में आ गया। तब कहेंगे जयंती। अंत में क्या हो गई? जय जयकार हो गई। तो अभी अंत है या नहीं है? अभी अंत है? अभी अंत नहीं है। तो शिव बाबा की जयंती भी नहीं है। अंत की निशानी क्या होगा? अति होगी तब अंत होगा। और जब अंत होगा तो संसार में शिव बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष होना माने जन्म होना, जयंती होना। तो अभी जयंती नहीं है, अभी जल्दी जयंती होने वाली है।
बाबा हाँ, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का ढेर का अंतर लीटर में बताते
हैं। गंगा यमुना सरस्वती का
ढेर का अंतर डिटेल में बताइए।
बेहद का
अर्थ डिटेल में बताइए।
इसमें डिटेल की क्या बात है। भक्ति मार्ग में गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदियों का बड़े से बड़ा मेला कब लगता है? अरे अरे इलाहाबाद में इन तीनों नदियों का मेल होता है कि नहीं है? तो कुंभ का मेला होता है। जब ज्ञान कलश इन नदियों को मिलता है तब कुंभ का मेला मनाया जाता है। तीनों नदियां मिलकर के एक हो जाती हैं। तो पहले अलग अलग रही होंगी कि एक थी है? अरे तीनों नदियां पहले अलग अलग रही होंगी, अभी वर्तमान काल में वो तीनों नदियां गंगा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली, यमुना के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली और सरस्वती के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली तीनों अलग अलग हैं कि एक हो गई है? अभी अलग अलग है। जब तीनों मिलकर के अल्लाह के बाद में क्या कहा अल्लाह का बाद, जैसे फरक्काबाद, जैसे अल्लाह बाद, किसका बाद? अल्लाह का बाद, अल्लाह का आबाद किया हुआ कौन सा नगर है? अल्लाहाबाद। वो कौन सा नगर है जहां अल्लाह आबाद हो जाता है? है अरे ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कौन सा नगर है जो अल्लाह के आने से आबाद होता है ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे इतने यहां ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनको यही पता नहीं कि अल्लाह का वो नगर कौन सा है जो आबाद होता है सारे संसार के बीच में? है कहां? है फरक्काबाद के लोग मालिक को, विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं। और कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों नहीं लिया? फरक्काबाद का ही नाम क्यों लिया? अरे इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो डिस्ट्रिक्ट होगा जहां से विश्व का मालिक प्रत्यक्ष होता है, तो उसकी तरफ मुरलियों में इशारा किया। एक मुरली में नहीं, कई कई मुरलियों में इशारा दिया है। मालिक है, घर का मालिक होगा ना, वो मालिक निराकार है या साकार है? फरक्काबाद वालों से पूछो, जाकर पूछो, उन्हें बताओ। तो वो फरक्काबाद की तरफ कोई एक दुनिया की नजरों से अनजान स्थान है। क्या? दुनिया की नजरों से अनजान है, लेकिन जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है तो संसार में आबाद हो जाता है। तो उसका बेहद का नाम क्या पड़ता है? अल्लाहबाद। अल्लाह ने आकर के उसको आबाद किया। जहां तीनों नदियां आकर के इकट्ठी होती हैं तब कहा जाता है अल्लाहबाद। है सोम कौन है? है कौन है सोम? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा की गोद में कितने धर्म पलते हैं? है आठ धर्म पलते हैं। आठ धर्मों की आठ पटरानियां हैं, है या नहीं है? आठ पटरानियां। सतयुग में जाकर के उन आठ पटरानियों के आठ पटराजा भी होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो वो आठ पटरानियां और आठ पटराजा कितने हुए? सोलह आत्माएं ऐसी हैं जो ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थ करने वाली है। क्या? नारायण और नारायणीय। इसलिए सोलह सोमवार प्रसिद्ध है। और ओम शांति। प्रदक्षिणा मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ, चक्कर काटते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं जो चक्कर काटने वाले पतंगे हैं, भगत। तीन तरह की आत्माएं बताई हैं। एक है आती है और झट स्वाहा हो जाती है। उनको ज्ञानी कहेंगे या भक्त कहेंगे? है, उनको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे, वो भक्त नहीं है, उनकी बात छोड़ दो। जो भक्त हैं वो बार बार आते हैं, भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, और थोड़ा सा सेक आ गया, थोड़ी सी टांग जल गई, थोड़ी सी मूछ जल गई और भाग जाते हैं। बार बार आते हैं, बार बार भाग जाते हैं। तो वो है चक्कर काटने वाले पतंगे। उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं और टांग जल गई, हाथ जल गया, नाक जल गई, कान जल गया, तो भाग गए, तो फिर वापस ही नहीं आते। एक ही चक्कर काटने वाले। और दूसरे जो हैं जो बार बार चक्कर काटते हैं, बार बार भागते हैं, वो कड़क भक्त हैं। हैं भगत, ज्ञानी नहीं है। तो उसकी यादगार में क्या करते हैं? बार बार प्रदक्षिणा करते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, ऐसे करते रहते हैं। यहां भी ऐसे बहुत बैठे होंगे, है? भट्टी करने के बाद पहले रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर सात दिन में एक बार आते हैं जाते हैं, फिर वो भी छोड़ देते, फिर महीने में एक बार आते, फिर वो भी छोड़ देते, फिर नाम मात्र दो महीने में एक बार आते। कोई कोई ऐसे होते हैं वो भी खलास बंद, फिर जब आवाज निकलती है थोड़ी थोड़ी इधर उधर, मित्र संबंधी ज्यादा भागते हैं तो फिर आने लगते। तो आना जाना, जाना आना, ये बार बार करना माना प्रदक्षिणा करना। और अरे ये टर्राउटा ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। हाँ, क्या कह रहे?
नदियों
सागर
में मिलकर पुष्कर, बारह महीने में एक बार, बारह साल में एक बार नदियों को पुष्कर आते हैं।
नदियों को सागर से
मेला होता है ना उधर, पुष्कर का मेला।
हाँ, नदियों में बार बार स्नान करने जाते हैं। हाँ,
ये बार साल हर एक नदी का
बारह साल में
बृहस्पति से मिलना होता है, तो उसको पुष्कर कहते हैं। बारह महीने में एक नदी को पुष्कर आता है।
कुंभ मेला बारह साल के बाद एक बार होता है। हर बारह साल के बाद
एक एक नदी का
एक मेला होता है, और जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनका मेला होता है, और सागर में
एक बार।
सिर्फ एक बार होता है। बाबा भी कहते हैं नदियों के किनारे जो मेले लगते हैं या कुंभ के मेला जिसे कहा जाता है, उस मेले में मैले होते हैं क्योंकि वहां सागर नहीं होता है, और जहां सारी नदियां मिलकर के एक सागर में गिरती हैं उसको कहा जाता है गंगा सागर का मेला। वो सागर एक ही बार होता है। कहां की यादगार? संगम युग की यादगार है। अभी सागर और नदियों का मिलन एक साथ होने वाला है, वो असली मेला होगा जहां सागर में सारी नदियां इकट्ठी होकर के मिलेंगी। तो गाया जाता है और मेले बार बार और गंगा सागर एक बार। और बारह राशियां हैं दुनिया के, जितने भी मनुष्य हैं वो कितने भागों में बांटे गए? बारह राशियों में बांटे गए हैं। ये जो बारह राशियां हैं इनमें आवृत्ति होती है। वैसे भी सन 76 से लेकर के जो त्रेता युग सतो प्रधान भक्ति मार्ग का युग है, सतो सामान्य भक्ति मार्ग का युग है, उसमें शूटिंग के लिए कितना टाइम लगता है? 76 से लेकर 88 तक कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष हुए। वो 12 वर्ष में भक्ति मार्ग की पूरी आवृत्ति हो जाती है। इसलिए नदियों का मेला 12-12 साल के बाद लगता है, कहीं कहीं 6 वर्ष के बाद भी लगता है। और
हाथी पर सवार करते हैं और बाजू में शेर होता है।
हाथी पर सवार
सवारी होती है और उसकी बाजू में एक शेर होता है।
हाँ जी, जैसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या भारत की गवर्नमेंट के लिए, भारत की गवर्नमेंट ज्यादा काम कौन सी बैंकों से लेती है? है दूसरी बैंकों से प्रत्यक्ष ज्यादा काम लेती है। एक बैंक ऐसी है जिसको रिजर्व करके रखती है, जब कोई बड़ा घाटा वाटा आ जाएगा तो कौन सी बैंक से काम लेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ऐसे ही जो भारत माता है, क्या विदेशियों की माता नहीं है? जगदम्बा नहीं है, कौन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता हाथी रूपी महारथियों का आधार लेकर के काम करती रहती है। जब वो हाथी रूपी महारथी भी धोखा दे जाते हैं तब क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से काम करती है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? है शिव बाबा, जिसको कहते हैं कुबेर। है सारी धन संपत्ति का खजाना किसके पास इकट्ठा होता है? कुबेर के पास, जिसका नाम दिया है काशी मां। क्या नाम दिया है? है वरुणासी, वरुणा नदी और गंगा नदी जब दोनों का मेल होता है तो उस जगह का नाम दिया है काशी नगरी। काशी माने काश्य, शक्ति, याद की शक्ति, उसको कहते हैं योग। उस योग का खजाना होता है योगिनी के पास, तो उसका आधार लेती है। तो बताओ राजधानी की स्थापना में सबसे जास्ती सहयोग कौन देता है? लक्ष्मी तो राजधानी में अंदर अंदर राज्य करेगी, लेकिन राज्य चलाने के लिए वो ज्ञान धन कहां से लेती है? है शक्ति कहां से लेती है? है काशी नगरी से। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि तीनों ही देवियां त्रिदेवियां किसकी पूजा करती हैं? है अरे तीनों देवियां पूजा किसकी करती हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तीनों को अपना बच्चा किसने बनाया? अनुसुईया ने बनाया, काशीमा ने बनाया, उस मां की सासू की तरह पूजा करती है। और
नवरात्रि
जी और राम की नवमी करते हैं। क्या राम की नवमी मनाते हैं नौवें दिन, और दुर्गा की अष्टमी मनाते हैं, और नौ दिन दुर्गा पूजन होता है। तो देवियों की ज्यादा लंबे समय तक पूजा होती है या राम की ज्यादा पूजा होती है? है नौ दुर्गा के दिनों में है देवी के जो नौ दिन माने गए हैं उनमें नौ दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है या राम की ज्यादा उपासना होती है? नौ दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। क्यों? वो नौ दुर्गा एक बार पूजन होता है साल में या दो बार पूजन होता है? मालूम ही नहीं है। नव दुर्गा पूजन दो बार होता है। क्या? एक राम का जन्म मनाते हैं शिवरात्रि के बाद, उन्हीं दिनों में राम की भी पूजा होती है, लेकिन नव दुर्गा पूजन भी मनाते हैं। उस समय रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार वर्ष में नव दुर्गा पूजन होता है शिवरात्रि के बाद, राम का जन्म मनाते हैं। राम बाप के जन्म के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण बच्चे का जन्म मनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार वर्ष में नव दुर्गा पूजन मनाते हैं, और उसके लास्ट में नौवें दिन राम का जन्म मानते हैं, रावण को मारने वाला। तो इस तरह जो नव दुर्गा पूजन है वो वर्ष में दो बार होता है। आपने भी पूजा की होगी, पहली बार नव दुर्गा पूजन ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में कब किया? है? अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? की। वो हुआ पहला नव दुर्गा पूजन। वहां वास्तव में रावण नहीं मारा जाता, सिर्फ नव दुर्गा पूजन होता है, राम का जन्म मात्र होता है, लेकिन रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार नव दुर्गा पूजन होता है एडवांस में, तब रावण मारा जाता। तो बातें सारी कहां की हैं? संगम युग की बातें हैं। और ओम शांति। हमको भी जाना है भाई।